दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है पलाश अरोड़ा, कहानियाँ कहता हूँ। आज के इस अंश में हम बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, उस सदी के महान शायर के बारे में। उनकी थोड़ी जीवनी का जिक्र करूँगा और बाकी उनकी जो खास खास नज़में हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो जो लोग लिटरेचर के जगत से तारुफ नहीं रखते, जो लोग पोइट्रीज वगैरह से उतना दिलचस्पी नहीं रखते, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा इसको सुन के देखिए, अच्छा लगेगा। उस शख्स के बारे में जानकर देखिए, उनको पढ़कर या सुनकर देखिए। क्या होता है जब नयापन आपको हिट करता है, जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तो अच्छा लगता है। कभी कभी वो चीज़ें आप सीख जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आपको बाद में अच्छा लगने लगता है। तो एक बार उस नएपन के लिए इस चीज़ को सुनिए। तो शुरुआत करते हैं फैज़ अहमद फैज़ की इस जीवनी के साथ। फैज़ अहमद फैज़ जिनका जन्म हुआ था सन 1911, महीना था फरवरी, 13 फरवरी, सियालकोट में इनका जन्म हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा रहा करता था, मगर आज के दौर में वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी युवा होने के साथ साथ ही भारत की आज़ादी की निर्णायक जो दौर की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी। मतलब जब वो अपने टीनेज में पहुंचे, जब टीनेज पार कर ली थी, माफ़ कीजिएगा, तब भारत की जो आज़ादी की जो जंग थी वो निर्णायक दौर पर थी। तो फैज़ की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उर्दू और अरबी के उसमें हुई थी। उनके पिताजी बैरिस्टर थे, इसलिए उन्होंने फैज़ को एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में दाखिल कराया था, ताकि जो है उनकी जो अंग्रेज़ी रहे वो अच्छी रहे। तो अपनी उच्च शिक्षा के लिए फैज़ ने लाहौर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ी और फारसी में अपनी डिग्री हासिल की। उस समय तक उन्हें शायरी से प्रेम हो चुका था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि फैज़ अहमद फैज़ ने लिखना की शुरुआत कर दी थी 17 साल की उम्र। उनकी जो पहली गज़ल उन्होंने लिखी थी वो 17 साल की उम्र में लिखी थी, और उनकी जो पहली नज़म आई थी वो थी 18 साल की उम्र। तो उन्होंने बहुत कम उम्र में ही लिखना और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक बार का किस्सा याद आता है उनके ही प्रारंभिक दौर में, जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कॉलेज के टाइम की बात है। तो उनकी अंग्रेज़ी भाषा पर पकड़ इतनी अच्छी थी कि उनके मास्टर ने उन्हें 150 में से 165 अंक प्रदान कर दिए। तो बाकी जो सह विद्यार्थी थे उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया कि इस तरह से थोड़ी होता है कि 150 में से 165 अंक कैसे दिए जा सकते हैं। तो उनके मास्टर ने जवाब दिया कि मेरा बस चलता तो मैं 165 से ज़्यादा भी अंक दे सकता था, मैं दे नहीं पाया। तो कुछ इस तरह उनकी अंग्रेज़ी भाषा पर भी कमांड रही है उर्दू के अलावा। तो ये कुछ उनका शुरुआती दौर था। उन्होंने फौज में भी अपनी हिस्सेदारी दी है। तो फौज के अलावा अगर बात करें उनकी पत्रकारिता के जीवन में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। 1946 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में दाखिला ले लिया था। तो उस समय के बहुत बड़े विचारक थे मियाँ इफ्तखारुद्दीन। उस समय उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स शुरू करवाया था, पाकिस्तान टाइम्स अखबार शुरू किया था। ये अखबार उन दिनों के बहुत ही मशहूर अखबार द हिंदू के जवाब में शुरू किया गया। तो फैज़ को इसका जो है मुख्य संपादक बनाया था। तो फैज़ ने इनकी संपादक की नौकरी कबूल की और जो आर्मी की जो जॉब थी वो छोड़ दी। जब जैसे फैज़ की नौकरी आगे बढ़ती गई तो उस समय 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो उसके बाद बहुत ही खून खराबा, बहुत अराजकता का माहौल फैल गया था। तो उनके लेख उस समय के अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने उस वक़्त लिखी थी। उस व्यथा से बहुत परेशान थे फैज़। तो उन्होंने ये बताया था कि ये इस तरह की आज़ादी जो थी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मतलब हम ये नहीं चाहते थे। तो जो उन्होंने लिखा था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका वो सहर तो नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे, यार की मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जा रुकेगा सफीने गमे दिल। तो ये उन्होंने अपनी उस टाइम पे अपनी व्यथा को दर्शाते हुए लिखा था, काफी गहरी सोच में लिखा था। अब क्या होता है ना कि जब भी आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब भी आप सरकार के खिलाफ बात करते हैं, तो आपकी आवाज़ अक्सर जो है दबा दी जाती है, आपको जेल में डाल दिया जाता है, आपकी नज़में मिटा दी जाती हैं। तो इनके साथ भी किस्सा हुआ था। 1951 में सज्जाद जाहिर और ये जो इनके मित्र थे, तो इन दोनों के ऊपर रावलपिंडी साजिश का एक केस दायर कर दिया था, जिसके तहत इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो उन पर ये आरोप था, उन पर लियाकत अली खान जो समय के हुकूमत में थे, उनकी हुकूमत को तख्ता पलट करने की कोशिश का आरोप लगाया था इन पर। तो करीब 4 साल तक ये बंद रहे थे जेल में। 1956 में फैज प्रगतिशील लेखक संघ के एक सम्मेलन में भाग लेने भारत आए थे, मतलब छोड़ दिया गया था उस टाइम पे बाद में, 4 साल के बाद। तो 1956 में ये भारत आए हुए थे। इसके बाद 1958 में फैज अफ्रीका एशिया के लेखकों के सम्मेलन में भाग लेने ताशकिन गए थे। अब एक और चीज़ देखिए कि इसी दौरान जनरल जो आयूब खान थे, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अब हुआ ये कि फैज को गिरफ्तार से बचने के लिए ये हिदायत दे दी कि आप पाकिस्तान ना लौटें, मगर फैज अपने ही उसूलों पर चलने वाले इंसान थे, वे पाकिस्तान लौटे। तो वापस आते ही कुछ दिनों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फैज 6 महीने तक जेल में रहे, जहाँ उन्होंने एक बहुत ही मशहूर नज्म लिखी थी जो दुनिया को पसंद आती है। उस नज्म को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उस नज्म का एक छोटा सा हिस्सा, निसार में तेरी गलियों की है वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों की है वतन के जहाँ, चली है रस्म की कोई ना सर उठा के चले। निसार में तेरी गलियों की है वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले। जो कोई है चाहने वाला तवफ को निकले, जो कोई है चाहने वाला तवफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्मो जान बचा के चले, नजर चुरा के चले जिस्मो जान बचा के चले। तो मतलब इस तरह से उन्होंने वो रिवोल्यूशनरी पोएट के तौर पर आगे आए थे। ये रिवॉल्यूशन के तौर पर उन्होंने लिखा था कि मतलब अब पाकिस्तान में हमें नज़र बचा के चलना पड़ेगा, अपने जिस्मो जा बचा के चलने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह वहाँ के हुकूमत का जो राज था भारी हो रहा था लोगों पर। तो साल आता है 1985, पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की तानाशाही जो थी वो चरम पर थी, और उसी समय उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि औरतें जो हैं वो साड़ियाँ नहीं पहनेंगी, मतलब औरतों के साड़ियों पहनने पर पाबंदी लगा दी। और सबसे बड़ी बात तो है कि फैज़ की नज़में, फैज़ की जो गज़लें थी, वो ना टीवी ना रेडियो पर कहीं भी प्रसारित नहीं की जाती थी, क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट में थी। तो ऐसे में एक पाकिस्तान की उस समय की बहुत बड़ी गायिका थी, इकबाल बानो, जिनके बारे में मैं बाद में जिक्र करूँगा अपने ही इस पॉडकास्ट की सीरीज में। तो इकबाल बानो ने विरोध दर्ज कराते हुए लाहौर के एक आलमरा ऑडिटोरियम है वहाँ काले रंग की साड़ी पहनी और फैज की वो नज्म गाई जो आज के दौर में बड़े कल्ट में थी, जो अभी CAB का जब माहौल चला था, जब शाहीन बाग वगैरह में जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो ये नज्म हर नौजवान वहाँ पे गाया करता था। और अब तक हमें वो नज्म जहन में है, वो फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई थी। वो नज्म कुछ इस प्रकार थी।
हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम जब जुल्म सितम के कोहे गरां, जब जुल्म सितम के कोहे गरां, रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्म सितम के कोहे गरां, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरूपर, और अहले हकम के सरूपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लाहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।
तो ये थी वो हसीन नज्म जो दोहराई गई थी दिल्ली में शाहीन बाग में गाई गई थी युवकों के द्वारा। फैज की एक और मुझे नज्म याद आती है फिल्म हैदर में जिसका इस्तेमाल किया गया था गुलों में रंग भरे, उसका एक कुछ अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्रे यार चले, गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब हिजरा, हमारे यश्क तेरी यका आकबत संवर चले, मकाम फैज कोई राह में ऊंचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले, गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले। तो कुछ इस शैली की नज़में, कुछ इस शैली की गज़लें लिखा करते थे फैज़ अहमद फैज़। तो ये एक अंश था फैज़ अहमद फैज़ की जीवनी पर आधारित, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी नज़में मैंने आपके सामने रखी। आने वाले इसी पॉडकास्ट की सीरीज में और लोगों के बारे में हम बात करेंगे और अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका जो लिखा हुआ है वो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। ये मैं ब्रीफ में इसलिए रखता हूँ ताकि आप उस शख्स के बारे में थोड़ा सा जान सकें और मेहनत करें उस शख्स को खोजने की खुद से, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं आपके सामने रख दूँगा तो फिर एक हो जाता ना कि सब कुछ ही रख रहा हूँ, आप क्या करेंगे कुछ। मैं चाहता हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो खोजिए इस शख्स को, सुनिए इस शख्स को। तो इसी के साथ मैं छोड़ कर जाता हूँ सुरेखा सीकरी की आवाज़ में गाई फैज की एक नज्म के साथ। उस नज्म को जानिए, उस नज्म को सुनिए और इसी तरह अच्छे अच्छे लोगों को सुनते रहिए। और हाँ, अपनी रुचि थोड़ा सा लिटरेचर के टुवर्ड्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बस इतनी सी दरख्वास्त। तब तक अल्लाह हाफिज़।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलस्म, रेशमों अतलसों कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी तो कह जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी।